नमस्कार श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सिद्धार्थ।
और सबसे पहले नजर डाल देते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 85 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच बनाया। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने पेरिस ओलंपिक के लिए गगन नारंग को मिशन प्रमुख यानी शिफ्ट डे मिशन बनाया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। और म्यूनिख में आज देर रात यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में स्पेन का सामना फ्रांस की टीम से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं महिला क्रिकेट की, जहां चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबला खेला जा रहा है और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 85 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 17 ओवर और एक गेंद में 84 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। फिलहाल ताजा अपडेट ये है और जिस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरा मैच फिलहाल वो नहीं खेल पाई दक्षिण अफ्रीका की टीम। और अगर हम बात करें तो श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। उसने इसी मैदान पर पहला मैच 12 रन से जीता था जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। उत्तरा, शुरू से आप इस पूरी सीरीज पर नजर बनाए हुए हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो भारत के सामने लक्ष्य है जीत के लिए 85 रन का और दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, क्या समझती हैं किस ओर मैच का रुख जाता दिखाई दे रहा है?
देखिए, जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया है इस सीरीज में मैच जीतती सी ही लग रही है भारतीय टीम
जी।
पर भारत में इतना प्रॉपर एक सीरीज होना, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के साथ खेलना, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत में आपको महिला क्रिकेटर्स उस तरह से कॉम्पिटिटिव खेलती हुई दिखती नहीं है। डब्ल्यूपीएल जरूर शुरू हुआ है, दो सीजन हुए हैं, लेकिन महिला क्रिकेट अभी भी उस तरह से, लोगों को लगता है कि महिला क्रिकेट बहुत ही बोरिंग टाइप की चीज होती है, उसमें छोटी बाउंड्रीज होती हैं, पावर हिटिंग नहीं होती है। हालांकि बहुत ज्यादा बदल चुका है खेल, लेकिन एक आम जनता के लिए अभी भी महिला क्रिकेट एग्जैक्टली क्या है उसका आइडिया नहीं है। तो वो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से चेन्नई में भीड़ भी आई है, बाकी वैसे भी चेन्नई में खेलों में भीड़ हमेशा आती है चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, पर महिला क्रिकेट में इस पूरी सीरीज में जिस तरह से भीड़ आई है और क्रिकेटर्स के नाम के साथ उनको पहचान मिल रही है, उनकी जर्सी पहन के लोग घूम रहे हैं, मुझे लगता है महिला क्रिकेट के लिए ये सीरीज बहुत जरूरी है। और अगर भारत जीतती है, जो जीतती ही लग रही है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आने वाले दिनों में क्योंकि स्मृति मंदना या हरमनप्रीत कौर जैसे जो है वो स्टार बन चुके हैं। पर जैसे कि अभी ये जो मैचेस हो रहे हैं इसमें जब आप श्रेयंका पाटिल या पूजा वस्त्रकर जैसे प्लेयर्स को देखते हैं या आशा जॉय जैसे खिलाड़ियों को इतने सालों के बाद खेलने का मौका मिलता है भारत के लिए, वो भी अपनी क्राउड के सामने, तो वो एक अलग लेवल का आपके खेल को अलग लेवल पे लेके जाता है।
बिल्कुल। और आज की इस फिलहाल जो पहली पारी और भारत के अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो पूजा वस्त्रकर ने आज 4 विकेट लिए हैं और 4.1 की उनकी इकोनॉमी रही है, 3 ओवर और 1 गेंद उन्होंने बल्लेबाजी की है। इसके अलावा राधा यादव का जिक्र करना होगा जिन्होंने 3 विकेट लिए और 2 की इकोनॉमी दी और इसके अलावा एक एक जो विकेट है वो अरुंधति रेड्डी को मिला है, श्रियंका पाटिल को एक विकेट मिला और इसके अलावा दीप्ति शर्मा को एक विकेट मिला। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय गेंदबाजों का जो दबाव है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम पर जबरदस्त दिखा है। और अगर हम बल्लेबाजी पर भी एक नजर डालें तो लॉरा ने यहां पर 9 रन बनाए हैं, तेजमिन ब्रिट्स ने 20 रन की बल्लेबाजी करी है और इसके अलावा मरिजान कॉप की हम बात करें उन्होंने 10 रन बनाए, अन्विका बोस ने 17 रन बनाए। इसके अलावा बाकी अगर हम देखें तो 9-8-2 इस तरह की पारी खेली है। तो फिलहाल क्रीज पर कोई भी खिलाड़ी ज्यादा टिकटा नजर नहीं आया और ऐसे में एक छोटा स्कोर दक्षिण अफ्रीका की टीम बना
बिल्कुल और इससे समझ आता है कि बॉलिंग कितनी अच्छी थी, क्योंकि ये जितने भी नाम आपने लिए हैं साउथ अफ्रीका के, चाहे वो लॉरा हो या तेजमिन ब्रिट्स हो या मैरिजन कैप हो या नडीन डिक्लर्क हो, ये सारे बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, ये बहुत सालों से खेल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इनकी। तो ऐसे खिलाड़ियों को एक कलेक्टिव तौर पे आपने जब 100 के नीचे रोका है तो भारतीय गेंदबाजी आपको समझ आती है कि कितनी शानदार प्रदर्शन उनका रहा है और किसी एक खिलाड़ी का नहीं है। राधा यादव स्पिनर हैं, पूजा वस्त्रकर मीडियम पेसर हैं, श्रियंका पाटिल हैं यंगस्टर हैं, दीप्ति शर्मा थोड़ी एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर हैं, तो एक बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट बॉलिंग यूनिट का आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी ने बहुत कमाल का किया और बाकियों ने नहीं किया है। जिनको विकेट नहीं भी मिले हैं उन्होंने भी इतनी सधी हुई गेंदबाजी की है कि सामने प्रेशर बनता है और आपने रन नहीं दिए हैं उस चीज पे।
बिल्कुल, और अब भारत ने अपनी बल्लेबाजी शुरू कर दी है और देखना दिलचस्प होगा कि भारत को फिलहाल किस तरीके से 117 गेंद में 80 रन की फिलहाल जरूरत रह गई है। तो उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीसीसीआई ने भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच यानी हेड कोच बनाया है। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। गंभीर को नया मुख्य कोच बनाए जाने की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने एक ट्वीट के माध्यम से अब से कुछ देर पहले दिया है और ये एक सभी को इंतजार था क्योंकि ऑलरेडी राहुल द्रविड़ ने बोल दिया था कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद से रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ऐसे में सभी की नजरें थी कि भारतीय टीम का नया मुख्य कोच कौन होगा और अब गौतम गंभीर को ये जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कितने खरे उतरेंगे गौतम गंभीर?
देखिए, कौन खरे कितने उतरेंगे ये तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तो अनाउंस किया है सिर्फ। हालांकि उनके बनने पे काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, एक तरह से ये कन्फर्म हो गया था कि वही बनेंगे, पर एक आधिकारिक मुहर लगनी बाकी थी जो आज हो गई है। एज अ कोच उन्होंने जितना केकेआर के साथ काम किया है या आईपीएल में जितना भी उन्होंने काम किया है, तो एक कोच के तौर पे हम कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि गौतम गंभीर ने हमेशा जिस भी टीम के साथ वो रहे हैं उस टीम को सबसे ऊपर रखा है, ना कि किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को। और जब वो दिल्ली में भी थे, जब कैप्टन थे या कैप्टन नहीं भी थे, सिर्फ सीनियर खिलाड़ी थे तो जो फर्स्ट क्लास था, जो खिलाड़ी उनको लगता है कि ये अपना दे सकता है या वो अच्छा खिलाड़ी है, उन्होंने उसको हमेशा बैक किया है। ये हमेशा ये गौतम गंभीर की एक बहुत बड़ी खासियत रही है। तो गौतम गंभीर को चाहे आप पसंद करें या ना करें, वो बहुत ही पोलराइजिंग कैरेक्टर जरूर है क्योंकि वो बहुत पैशनेट है। आप उनको या तो आप उनको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, मिडिल ग्राउंड नहीं होता है उनके साथ। पर ये कोई नहीं कह सकता कि गौतम गंभीर का कभी भी टीम के ऊपर कोई इंटरेस्ट रहा है।
वो बहुत बड़ा आपने जो बात कही है, तो किसी भी कोच के लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है और उम्मीद है कि टीम इंडिया इस नए हेड कोच के साथ बेहतर प्रदर्शन
और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि बहुत ही क्योंकि राहुल द्रविड़ को रिप्लेस कर रहे हैं जो एकदम उलट हैं इनसे, तो चीजें किस तरफ जाएंगी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे क्या क्या बदलाव आते हैं।
जी बिल्कुल। म्यूनिख में आज देर रात यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में स्पेन का सामना फ्रांस की टीम से होगा, जहां एक ओर स्पेन 3 बार की चैंपियन है, वहीं फ्रांस ने 2 बार खिताब अपने नाम किया है। क्या कुछ खास है आज के इस महामुकाबले में, बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा।
आज सभी फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें फुटबॉल एरेना म्यूनिख पर लगी होंगी, जहां देर रात यूरो कप का सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसमें फुटबॉल की दुनिया के दो दिग्गज स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। स्पेन की टीम अब तक अजेय रही है और वो 3 बार खिताब जीत चुकी है, वहीं फ्रांस 2 बार की चैंपियन है। अगर फ्रांस की टीम इस बार खिताब जीतती है तो वो स्पेन और जर्मनी की बराबरी कर लेगी, जिनके नाम 3-3 खिताब हैं। जिस तरह एक वक्त जर्मनी और इटली का दबदबा था, उसी तरह पिछले एक दशक से फ्रांस और स्पेन की टीमें फुटबॉल जगत की दो सबसे सफल टीमें रही हैं। मौजूदा टूर्नामेंट में स्पेन अपने सभी 5 मुकाबले जीतने वाली इकलौती टीम है और उसने अब तक 11 गोल किए हैं, जो टूर्नामेंट में सबसे अधिक हैं। किलियन एम्बापे की टीम फ्रांस ने 5 में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। देखना दिलचस्प होगा कि म्यूनिख में आज कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला आज होने वाला है और इस मैच के विजेता का सामना रविवार को बर्लिन में होने वाले फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड या नीदरलैंड्स की टीम से होगा, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और नीदरलैंड्स की बीच बुधवार को खेला जाएगा। और अगर हम देखें तो उत्तरा, आप भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा रही हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है कौन सी टीम भारी पड़ने वाली है?
ये बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल ऑफ प्लेइंग वाली टीमें हैं। फ्रांस के कोच दिदिये देशांस ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हाँ, हम बहुत बोरिंग खेलते हैं, आपको दिक्कत है तो आप कुछ और देख लीजिए। और स्पेन वहां दूसरी तरफ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग टीम्स है और बहुत ही पॉजिटिव और आगे बढ़ के खेलने वाली टीम रही है। यहां पे फ्रांस बहुत ही डिफेंसिव खेल रही है, तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग, जैसा मैंने कहा कि खेलने का तरीका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बारी बहुत इंटरेस्टिंग खेलने वाली टीम जीते, कई बारी बोरिंग खेल के भी आपको जीत हासिल होती है, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा।
बिल्कुल, इस पर हम सबकी निगाहें बनी रहेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग ने 2012 ओलंपिक खेलों के पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के कांस्य पदक विजेता और 4 बार के ओलंपियन गगन नारंग को मिशन प्रमुख यानी शेफ डे मिशन बनाया है। वे 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। गगन नारंग एमसी मेरीकॉम की जगह लेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ पीटी उषा ने बताया कि मैरीकॉम के इस्तीफे के बाद उप मिशन प्रमुख गगन नारंग को अपने आप मिशन प्रमुख बनने का विकल्प मिला है, तो फिलहाल ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है।
बिल्कुल, क्योंकि और ये अभी जो उन्होंने फैसला लिया है, इसको और ये अगर डिले करते तो शायद दिक्कत होती, क्योंकि अगले हफ्ते से वहां पर मीटिंग शुरू हो जाएगी, शायद इस वीकेंड से मीटिंग शुरू हो जाएंगी, तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है, जो प्री जितनी भी तैयारियां होती हैं, जो डीआरएम्स की मीटिंग होती है, उसमें एक आपका रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये अभी भी नहीं फैसला लेते तो वहां पे भारतीय दल जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं उनको शायद काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था।
जी बिल्कुल। और इस बीच भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मैच कल हरारे में खेला जाएगा। दूसरे मैच में भारत ने 100 रन से जीत हासिल की थी, वहीं पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हराया था। इस समय दोनों ही टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं, इसलिए कल का जो टूर्नामेंट है वो भी काफी अहम होगा।
अहम होगा और इसलिए भी होगा क्योंकि भारतीय वर्ल्ड कप टीम के कुछ खिलाड़ी जो हैं, जैसे संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे जो हैं, वो टीम को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कल के मैच से पहले, तो क्या उनको खेलने का मौका मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जितने अभी वहां पे गए हुए हैं वो सारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो रिंकू हों या शुभमन गिल जो कप्तान बन के गए हैं, तो एक तरह से आपकी सेकेंड आपकी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है, तो जो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी वहां जाएंगे उससे पूरे टीम में फेरबदल होने की जरूर संभावना है।
और इस बीच श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या को इस महीने के अंत में भारत के साथ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज से पहले टीम का अंतरिम मुख्य कोच नामित किया गया है। भारत 27 जुलाई से श्रीलंका में 3 T20 और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेगा। और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार, शुभरात्रि।